विभवरीशेष आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीवा विभवरीशेष आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम पूतन घाटन कैतब शातन जय दशरथि राम यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिया जन राधिका रमन भुवन सुंदर वर रावण तकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्र हारे ब्रजेर राखल गोप वृंद पाल चित्त हरि बंशी धारी ब्रजेर राखल गोप वृंद पाल चित्त हरि वंशी धारी योगेंद्र वंदन श्री नंद नंदन ब्रज जन भय हारी योगेंद्र नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी यशोदा नंदन कंस निसूदन निकुंज रास विलासी कदंब कानन रास परायन वृंद विपिन निवासी कदम्बकानन रास परायन वृंदविपिन निवासी। आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फुलशरजकामा गोपांगनागन चित्त विनोदन समस्त गुणगन धामा। गोपांगनागन चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम। जमुन जीवन खेली परायन मानस चंद्र चकोरा। जमुना जीवन केली परायन मानस चंद्र चकोरा। नाम सुधारस गाओ कृष्णा जश राखो वचन मन मोरा। नाम सुधारस गाओ कृष्णा जश राखो वचन मन मोरा। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। अतिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। విష్ణుపృష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతిదేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారి జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాస్ ఆది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. तो आप सबका स्वागत है. आज से जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू कर रहे हैं. सो जन्माष्टमी की तैयारी में सबसे पहला कार्य होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना. हम सबसे पहले माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से. अभी थोड़ा सा शायद तकलीफ हुई कुछ भक्तों को. किसी का कार्ड नहीं है, किसी का नंबर नहीं है. दरअसल ये जो ये विशेष कोर्स जो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ये उन भक्तों के लिए है जो पहले से ही भक्ति में हैं. और इस कारण से हमने कुछ ऐसे कंडीशंस रखी कि जो भक्त सत्संग मंडल में हैं, जप करते हैं, वही लोग यहाँ पर आ सकें. और आशा करते हैं कि आप में से सब लोग जो भी यहाँ पर बैठे हैं कम से कम 10-12 माला जप और सत्संग मंडल में हैं. सब लोग ऐसे कोई हैं जो सत्संग मंडल में नहीं है? कोई यहाँ पर ऐसे? तो इसका कारण ये था कि जब हम लोग जनरल क्लास करते हैं जहाँ पर बहुत सारे नए लोग भी होते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ ऐसी चर्चाएं नहीं कर पाते जो नए भक्तों के लिए ठीक नहीं हैं. जैसे कभी कभी भक्तों के बीच के संबंध, इनकी चर्चा हमें साधारणतः जनरल क्लासेस में नहीं करनी चाहिए. तो ऐसी चर्चाएं हम भक्तों के बीच में कर सकते हैं. भक्तों के हृदयों में जो अनर्थ हैं उनकी चर्चाएं हम भक्तों में आपस में कर सकते हैं. और साथ ही साथ भगवान की जो लीलाएं हैं उनमें जो छिपे हुए संदेश हैं जिन्हें आचार्यों ने प्रकट किया है, जिन भावों को आचार्यों ने प्रकट किया है, उन निर्देशों को, उन भावों को हम लोग तभी समझ सकते हैं जब थोड़ा बहुत हम लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें, थोड़ा सा नियमों का पालन करें. तो इस कारण से ये कोर्स यहाँ पर हम कर रहे हैं. साथ ही साथ ये बहुत अच्छा है कि जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम लोग कर रहे हैं ताकि कृष्ण लीला का स्मरण हो सके. और सबसे महत्वपूर्ण कारण इस कोर्स का करने का ये है कि हम अपने स्वयं के हृदय की शुद्धिकरण के लिए इस चीज़ को, इस कृष्ण कथा को बोल रहे हैं, ताकि इस कृष्ण कथा को कहने से, इसका श्रवण करने से, इसको बोलने से हृदय का शुद्धिकरण हो सके. तो आइए श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम लोग आज इस कोर्स को प्रारंभ करते हैं. आज के दिवस पर केवल परिचय होगा कि ये कोर्स क्यों है, क्या कारण है और इससे क्या लाभ होगा. चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए, इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया. और हम सब जानते हैं कि कैसे आगे चलकर महान आचार्यों जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद ने इसको और आगे बढ़ाया. हम लोग जो इस आंदोलन में हैं, जो शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, या कहना चाहिए कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं, लोगों को हम लोग ये जाकर बतलाते हैं कि आप जप कीजिए, जप करने से हृदय शुद्ध होगा, जप करना आवश्यक है. लेकिन भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो अनर्थ हमारे हृदय में हैं उन्हें हम निकालना भूल गए हैं. जिस चीज़ का प्रचार हम लोग बाहर कर रहे हैं उस चीज़ का प्रचार हमने अपने हृदय में नहीं किया है. और इस कारण से धीरे धीरे ये भक्ति मार्ग एक यांत्रिक कार्य हो जाता है. जैसे बताते हैं कि जब शुरुआत में कोई भक्ति में आता है तो बड़ा उत्साह होता है. ये इस तरह है कि जैसे विवाह होता है और विवाह के बाद जो दंपत्ति होते हैं बड़े सुखी रहते हैं कुछ समय तक, और फिर थोड़े समय बाद जो जीवन की समस्याएं हैं, पारिवारिक जीवन की समस्याएं, वो सामने आने लगती हैं, और फिर धीरे धीरे कभी कभी स्थिति इस तरह ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है कि वही दो लोग जो अग्नि के सामने ये वचन लेते हैं कि हम जन्म जन्म तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, उनके लिए कुछ क्षण भी साथ में रहना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार भक्ति में हम लोग आते हैं, दीक्षा के समय अग्नि के समक्ष हम लोग एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपना पूर्ण जीवन श्रील प्रभुपाद की सेवा में, इस आंदोलन की सेवा में समर्पित करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, जप करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद जब धीरे धीरे हृदय में अनर्थ फिर से जागृत होने लगते हैं, उत्साह कम होने लगता है, तो फिर ये असुर बाहर आते हैं, ये अनर्थ बाहर आते हैं। कृपया अपने मोबाइल्स बंद रखिए। ये गंभीर विषयों की चर्चा हो रही है, इसलिए आप सबसे भी विनती है कि इसको बड़ी गंभीरता से लीजिए। ये और एक कारण है कि हम लोग इसको जनरल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गंभीर विषय गंभीर भक्तों के साथ चर्चा होना चाहिए, और ये आवश्यक है हम लोगों के लिए ऐसी चर्चाएं करना। तो हमारा हृदय जो अनर्थों से भरा है, कुछ समय बाद भक्ति में आने पर फिर ये सारे अनर्थ बाहर आते हैं, और फिर वो जो उत्साह शुरुआत में था भक्ति का, बहुत जोश से भक्ति करना, बड़े हमें हृदय में प्रसन्नता होती थी कि हम भक्त हो गए हैं, हम जप कर रहे हैं, हम भक्तों का संग कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, वही चीजें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। फिर मंदिर आना एक बोझ हो जाता है, जप करना एक बोझ हो जाता है, और फिर ऐसे समय में अगर सही मार्गदर्शन ना हो तो फिर व्यक्ति जैसे विवाह के में दो लोगों का एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है, इसी प्रकार भक्त का अन्य भक्तों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है, और फिर कुछ ही समय ऐसा रहता है कि वो धीरे धीरे भक्ति त्याग देता है, भक्तों का संग त्याग देता है, और ये सबसे बड़ा नुकसान है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भक्तों का संग त्यागता है, युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने प्रश्न पूछे, और उनमें से एक ये प्रश्न था कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या है, और युधिष्ठिर महाराज ने बतलाया, भक्तों का संग त्यागना। अगर सत्संग नहीं है तो ये व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, और ऐसा नुकसान हम अपने हृदय से बड़ी प्रसन्नता से कर लेते हैं ये मानकर कि ये स्थान मेरे लिए ठीक नहीं है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि सभी भक्तों को मेरे जो ग्रंथ हैं उसको पढ़ना चाहिए नियमित तौर से, क्योंकि अगर हम ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो थोड़े समय बाद भक्ति मार्ग में हम लोग केवल खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, और जो जीवन का अमूल्य अवसर हमें मिला है जिसके द्वारा हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, उसको खो बैठेंगे। तो भक्ति मार्ग में ये जो विशेष करके अभी ये कुछ दिनों का कोर्स हम कर रहे हैं, ये इसलिए कि हम समझें कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, और अगर उसमें ये अनर्थ हमारे बाधा बनते हैं, हमारा रास्ता रोकते हैं, तो हमें उन्हें हटा देना चाहिए। जैसे एक व्यापारी, अगर उसको पता है कि मुझे किसी विशेष व्यापार में मुझे इतनी इतना कमाई होनी है, और अगर उसमें छोटी मोटी कोई बाधा आती है तो वो उसको हटा देता है, उस छोटी मोटी बाधा से वो अपना व्यापार बंद नहीं करता है। इसी तरह हमें एक व्यापारी बनना है, और कैसा व्यापारी? ऐसा व्यापारी जो ये मानता है कि आज ही मुझे जितना कमाना है वो मैं कमा लूं, कल पर कुछ नहीं छोड़ता है। एक अच्छा व्यापारी वो है जो ये नहीं सोचता कि ठीक है आज इतना कमा लिया बाकी कल कमाऊंगा, वो ये सोचता है कि आज जितना कमा सकूं कमा लूं, फिर और कल और कमाऊंगा। तो ऐसा व्यापारी हमें बनना है कि आज जितना हम भक्ति में आगे बढ़ सकें, जितना प्रयास कर सकें, हमारे लिए तो प्रयास ही बहुत है, क्योंकि भगवान प्रयास से प्रसन्न होते हैं, भगवान हमारे फल से प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति भक्ति में आया, हमने देखा हमारे सामने आया, कुछ ही समय में वो ब्रह्मचारी हो गया, सैफरन पहन लिया, बड़ा लेक्चर दे रहा है, सन्यासी हो गया तो वो आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं है। ये बाहरी दिखावे से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान हृदय देखते हैं। भावग्रही जनार्दन, भगवान को भावग्राही कहते हैं, भक्तों को सारग्राही कहते हैं, और जो अभक्त हैं वो केवल भारवाही हैं, अर्थात बोझा ग्रहण करते हैं, भारवाही। तो हमारे पास चुनाव है, हमें सारग्राही बनना है या भारवाही, क्योंकि हम भावग्राही नहीं बन सकते, वो भगवान है, हमें सारग्राही बनना है, शास्त्रों के सार, आचार्यों के शिक्षाओं के सार को ग्रहण करना है। अगर हम उन्हें ग्रहण नहीं कर पाए तो केवल भारवाही रहेंगे, एक बोझा लेकर जीवन भर जिएंगे। इसीलिए भक्ति में आने के बाद इन अनर्थों को, इन बाधाओं को हमें दूर करना चाहिए। और ये बाधाएं हमारी भक्ति में जो आती हैं, ये असुर हैं। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की, लेकिन ये लीलाएं जब भगवान करते हैं तो ऐसा बताते जाता है कि भगवान एक कार्य से असंख्य कार्य पूर्ण करते हैं। केवल एक किसी असुर को मारते नहीं है, वो तो एक बाहरी दृष्टि से हमें दिखता है कि एक असुर को मारा है, लेकिन हृदय के असुरों को मारना यह भी बड़ा आवश्यक है। कृष्ण आए और उन्होंने असुरों का वध किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आकर हमको यह सिखलाया कि वही असुर जो आपके हृदय में बैठे हैं उनको कैसे मारना है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बतलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है पापेर नाश, पाप को नाश करने के लिए। और जितना हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे उतना ये चीज हमारे हृदय में प्रकाशित होगी। एक बड़ा सुंदर उदाहरण अभी स्मरण आता है, बंगाल में एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है, अखबार निकलता है, आनंद बाजार पत्रिका, प्रभु जी जानते हैं जो कैलकटा वगैरह के लोग हैं, और काफी प्रसिद्ध है वो। तो उसके मालिक हैं तरुण कांति घोष। तो ये तरुण कांति घोष ये बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आज हमें अभी पता नहीं, काफी सालों से हम टच में नहीं है कि वो हैं या नहीं है, लेकिन काफी समय पहले तो वो थे और बड़े प्रसिद्ध थे, और काफी उम्र होने के कारण उनको दादाजी या दादा ऐसे कहा जाता, दादा मतलब बड़े भाई को जैसे संबोधित करते। तो वो एक बार जिस समय चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के 500 वर्ष पूर्व हो रहे थे, उस वर्ष की ये बात है कि एक भक्त उनसे मिलने के लिए गए हमारे आंदोलन के, और उन्होंने उनको बतलाया, उस समय 500 वर्ष पूर्व होने में कुछ महीने बाकी थे चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के, गौर पूर्णिमा आने में। तो उन्होंने बतलाया कि मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बतलाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा बताइए। वैसे तो वो वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव परिवार से हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि गौड़ीय वैष्णव परिवार से होने पर भी कलयुग के प्रभाव के कारण इतना लोगों का मन दूषित हो चुका है कि वो फिर भी भोगों में लगते हैं। तो ये बताने लगे कि 2 महीने पहले मैं अमेरिका गया था इंद्रिय भोग करने के लिए, उस समय वो युवा थे। उन्होंने कहा कि मैं इंद्रिय भोग करना चाहता था, तो मैं अमेरिका गया, और अमेरिका में एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है लगुना बीच। तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में जाकर सबसे पहले लगुना बीच में करीब 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बिताना चाहता था। वहां पर अमेरिका में ऐसे कई स्थान हैं जहां लोग केवल भोग करने के लिए जाते हैं, जैसे भारत में भी ऐसे कई स्थान हैं, गोवा में लोग भोग करने के लिए जाते हैं, या भारत के और कौन से स्थान हैं, भारत इतनी पावन भूमि है कि उसके स्थान ही ध्यान नहीं आ रहा, अमेरिका में कहें तो धना धन नाम याद आ जाते हैं अमेरिका में है। तो लगुना बीच वो जाना चाहते थे, तो अमेरिका गए और लगुना बीच के जो पास का एयरपोर्ट है वहां पर वो उतरे, और वहां पर उतर कर जब वो आ रहे थे तो सामने जो ऑफिसर था, इंफॉर्मेशन ऑफिसर अर्थात जो सूचना देता है, अधिकारी वहां पर था। तो उस अधिकारी से उन्होंने जाकर पूछा कि यहां पर कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान है, देखने के लिए कौन कौन से स्थान है। जैसे होता है ना, आप कहीं पर जाए नई जगह पे तो आप पूछते कौन कौन से, उनका अर्थ था कि हम भोग करने के लिए कौन कौन से स्थान है इसको जाने। तो वहां का जो ऑफिसर था उसने उनको देखा और उसने कहा ये भारतीय हैं। तो उन्होंने कहा, वो अमेरिकन था ऑफकोर्स, उसने अंग्रेजी में कहा, हम आपको हिंदी में बतला रहे हैं। तो उसने कहा कि यहां पर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। अब ये तरुण कांति घोष ये लगुना बीच गए थे भोग करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। वहां पर जाकर वो पूछ रहे हैं कि कौन से स्थान है इंद्रिय तृप्ति के, और वो बतला रहे हैं कि यहां पर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो अब भारतीय होने के नाते इनको ये तो पूछना ही था भाई क्या मंदिर है कैसे। वैसे जैसे ही इन्होंने सुना मंदिर, तो उन्होंने कहा अच्छा मंदिर तो ठीक है, और कौन से स्थान है? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको इस मंदिर में जाना ही चाहिए, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो अब जब कोई अमेरिका वाला पाश्चात्य देश का व्यक्ति एक भारतीय को, वो भी गौड़ीय वैष्णव को बोल रहा है कि आपको मंदिर जाना चाहिए, तो थोड़ी सी शर्म तो उनको आई। तो उन्होंने पूछा चलो ठीक है, उन्होंने कहा किसका मंदिर है, कौन सा मंदिर है ये? तो उसने बताया पंच तत्व मंदिर है ये। तो जैसे ही उन्होंने सुना उन्हें पसीना आ गया। गौड़ीय वैष्णवों के लिए पंच तत्व शब्द सुनना, वो भी ऐसे स्थान पर जहां पर वो इंद्रिय भोग के लिए गए हैं, आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप वैष्णव गौड़ीय वैष्णवों को जानते नहीं हैं। पंच तत्व उन्होंने सुना, फिर भी उनकी इच्छा नहीं थी जाने की। तो उन्होंने कहा अच्छा ये पंच तत्व क्या है? तो उस अमेरिकन ऑफिसर ने एक पेपर निकाला, सामने निकाला, और वो अपने अंग्रेजी में बोलने लगा, पंच तत्व मीन्स श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, गदाधर। अरे सुन रहे, अरे अरे अरे, और सुनते सुनते उनको पूरा पानी आ गया। वो बतलाने लगे भक्तों को पहली बार जीवन में एयरपोर्ट पर मैं रोया था, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं भारत से गौड़ीय वैष्णव परिवार से चैतन्य महाप्रभु की भूमि से मैं यहाँ पर भोग करने आया हूँ, और यहाँ पर ये व्यक्ति पाश्चात्य देश का व्यक्ति मुझे कह रहा है कि तुम्हें मंदिर जाना चाहिए। तो बताने लगे कि मैंने अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, मैं मंदिर गया, वहाँ पर इस्कॉन का एक बड़ा प्रसिद्ध पंचतत्व मंदिर है। तो मैं मंदिर गया और मैंने कीर्तन वीर्तन में भाग लिया, प्रसाद लिया, और फिर वापस भारत आ गया। मैंने अपना पूरा अमेरिका का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और फिर उन्होंने बतलाया कि जब 500 वर्ष पूरे हुए तो सारे न्यूज़पेपर्स जितने थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा, उनकी जीवनी लिखी, चैतन्य महाप्रभु कैसे निमाई थे, फिर आगे चलकर क्या किया, सबने लिखा, सारे अखबारों में था। भारत सरकार ने भी एक विशेष स्टैम्प निकाला था, पोस्टल स्टैम्प। तो उस समय इन्होंने जो अपना पत्र का था उनके करीब 20 अलग अलग भाषाओं में एडिशन निकलते, और सब में उन्होंने फ्रंट पेज पे एक ही कथा छापी। उन्होंने बड़ा बड़ा हेडिंग दिया कि चैतन्य महाप्रभु के 500 वर्ष को अगर आप असल में मनाना चाहते हैं तो इसको पढ़िए। और उन्होंने अपना पूरा कहानी लिखी, कैसे कैसे वो अमेरिका गए और फिर क्या क्या हुआ। और फिर उन्होंने बतलाया, उसके बाद उन्होंने लिखा पूरा कथा बताने के बाद, कि ये जो 500 वर्ष का जो हम लोग मना रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये पूरा नहीं हो सकता जब तक हम लोग एक व्यक्ति को स्मरण ना करें, और वो व्यक्ति हैं हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ये सारे पेपर्स में उन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो वाणी है पापेर नाश, उसको सत्य करके दिखलाया। और फिर वो भक्त को कह रहे थे कि मैंने कई बार ये पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु पाप का नाश करने के लिए आए हैं, लेकिन उस दिन मुझे ये एहसास हुआ, ये साक्षात्कार हुआ कि चैतन्य महाप्रभु लगुना बीच में प्रकट हुए केवल मेरा उद्धार करने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है, ये श्रील प्रभुपाद की शक्ति है, कि उन्होंने ऐसे भोग के स्थानों में भी चैतन्य महाप्रभु को बाध्य किया प्रकट होने के लिए, ताकि ऐसे गिरे हुए या भूले भटके भक्तों का उद्धार हो सके। और ऐसे श्रील प्रभुपाद के परंपरा में उनकी शिक्षाओं को लेकर हम इस संस्था में हैं। तो हमें जानना चाहिए कि कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आ रहे हैं, और वही चैतन्य महाप्रभु जो पाप का नाश करने के लिए सारे जगत में प्रकट हुए हैं अलग अलग रूपों में, और यहाँ हम लोग बेलगाम में भी भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग इस ज्ञान को ले पा रहे हैं। तो इसलिए जैसे उस व्यक्ति को, तरुण कांति घोष को ये एहसास, ये साक्षात्कार हुआ कि चैतन्य महाप्रभु केवल उसका उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने हृदयों से इन अनर्थों को निकालें ताकि चैतन्य महाप्रभु इस हृदय में आ सकें और आकर शुद्ध कृष्ण प्रेम हमें दे सकें, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। कई बार हम लोगों ने इसको सुना है, कृष्ण प्रेम पाना ये जीवन का उद्देश्य है, लेकिन कितने बार हमने उसके लिए प्रयास किया है? क्या कार्य हम लोग करते हैं जिससे हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो? अगर हम लोग अपना जीवन देखें, अपनी दिनचर्या देखें, तो क्या हम लोग दिन भर में ऐसे कोई कार्य करते हैं कि जिससे कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो? लेकिन हम लोग सुनते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, लेकिन प्रयास नहीं करते। इसीलिए ये असुरों को मारना बड़ा आवश्यक है। तो आप सबसे ये विनती है कि आप इसको कोई एक क्लास, कोई एक प्रवचन, कोई एक ऐसा ही कोर्स ना समझें। हो सकता है हमारे प्रस्तुत करने में कोई गलतियां हों, हो सकता है ठीक से समझ नहीं आए, लेकिन इसके सार को, इसीलिए हमने शुरुआत में बताया सारग्रही बनिए। इन चीजों को जिनको प्रस्तुत कर रहे हैं, ये आचार्यों की शिक्षाओं पर आधारित है, तो ये प्रार्थना है कि जन्माष्टमी तक हम लोग करीब 21 असुरों को मारेंगे, प्रयास करेंगे। मारना तो कृष्ण के हाथ में है, आज प्रयास करेंगे पूतना वध करने का। तो प्रयास करेंगे इन 21 असुरों का वध कर सकें, लेकिन इन असुरों का एक एक का जब वध होगा तो आप प्रयास कीजिएगा कि हृदय से इनको निकाल कर फेंक दीजिए। जैसे समझिए कोई असुर को हम मारते हैं जो सूचित करता है ईर्ष्या का, द्वेष का, तो जिस समय उसको सुने, उस कथा को सुने, उसके पूर्व जन्म को सुने, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इसको निकाल फेंके। ये एक भेंट हमें कृष्ण को देनी चाहिए इस वर्ष जन्माष्टमी पर, कि जितना ज्यादा हो सके हम अपना हृदय शुद्ध करें। इससे अच्छी भेंट हम कृष्ण को और कुछ नहीं दे सकते। केवल यही एक चीज है जो हम दे सकते हैं, बाकी हम क्या दे सकते हैं कृष्ण को? लेकिन हम अपना हृदय शुद्ध करके उनकी ओर जाकर यह भेंट कृष्ण को दे, और यह भेंट सबसे ज्यादा प्रिय है कृष्ण को। बृहद भागवत अमृतम में वर्णन आता है कि जब गोप कुमार गोलोक पहुंचते हैं तो उस समय कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं, और एक गोप कुमार ब्रह्मांडों को पार करते हुए, ब्रह्मांड के आवरणों को छेदते हुए, वैकुंठ पार करते हुए गोलोक पहुंचते हैं। और फिर गोलोक में जब उस स्थान पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि कृष्ण वहां पर खेल रहे हैं अपने मित्रों के साथ, और जैसे ही कृष्ण इनको देखते हैं सब कुछ छोड़कर दौड़कर भाग कर आते हैं इनके पास, और गोप कुमार भी भाग रहे हैं। बड़ा बड़ा सुंदर चित्र है, ये दृश्य है कि गोप कुमार भाग रहे हैं, कृष्ण भाग रहे हैं, दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और जब दोनों आते हैं, गले मिलते हैं, दोनों मूर्छित हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, फिर एक दूसरे के गले लगते हैं, आंखों से अश्रुओं की धारा बहती है और फिर मूर्छित हो जाते हैं। ये प्रेम है कृष्ण का जीव के प्रति, और जीव का कृष्ण के प्रति, ये शुद्ध प्रेम है। ये हम सबके हृदय में है, केवल छुपा हुआ है, और उस प्रेम को इस समय हम लोग किसी दूसरे स्थान पर लगाए हुए हैं। भक्ति मार्ग का यही उद्देश्य है कि हम लोग इसी शुद्ध प्रेम को पुनः कृष्ण के प्रति लगाएं, कृष्ण को पुनः प्रेम करने का प्रयास करें और कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करें, जिसको हम खो बैठे हैं, जो हमारे लिए अमूल्य धरोहर है। हमारे लिए इस जगत में और कुछ भी मूल्यवान नहीं है, कोई धन, कोई यश, कोई ऐश्वर्य, कोई पद, यह हमें वो आनंद नहीं देता है जो आध्यात्मिक आनंद कृष्ण के संग में आने से मिलता है, कृष्ण की भक्ति करने से मिलता है। और कैसी भक्ति? शुद्ध भक्ति। अभी हम लोग जो कार्य कर रहे हैं ये केवल अपने आप को इन अनर्थों से ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब वो स्थिति आएगी जहां हमारी निष्ठा दृढ़ हो जाएगी, रुचि बढ़ेगी, आसक्ति होगी, तब हम जानेंगे कि भक्ति क्या है। अभी तो केवल हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, ये संघर्ष है हमारा, लेकिन इस संघर्ष से ऊपर उठना है। तो इसीलिए इन वृंदावन लीला के असुरों को मारने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण की लीलाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं जिन्हें नित्य लीला कहते हैं। नित्य लीलाएं ये भगवान गोलोक धाम में करते हैं और ये लीलाएं सदैव चलती रहती हैं, इसीलिए इन्हें नित्य कहते हैं। इनमें कई श्रेणियां हैं, आज हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी लीलाएं हैं नैमित्तिक लीलाएं, जो भगवान अलग अलग ब्रह्मांडों में करते हैं। नैमित्तिक अर्थात थोड़े समय के लिए वहां पर की जाती हैं, एक विशेष लीला। उदाहरण के लिए नित्य लीलाओं में आते हैं गोचारण लीला और रास लीला। ये भगवान की नित्य, ऐसे अन्य कई लीलाएं हैं, ये कुछ उदाहरण हैं। रास लीला, गौचारण लीला, ये गोलोक में चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती है। और फिर नैमित्तिक लीलाओं में उनके उदाहरण हैं असुरों का वध। गोलोक में भगवान असुरों का वध नहीं करते हैं, गोलोक में भगवान वृंदावन का त्याग भी नहीं करते हैं। वृंदावन से मथुरा जाना ये नैमित्तिक लीला है, लेकिन आचार्य समझाते हैं कि कभी कभी ये नैमित्तिक और नित्य लीलाएं मिल जाती हैं। और गोलोक में भी कभी कभी भगवान वृंदावन छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी इसको नैमित्तिक इसलिए कहते हैं क्योंकि फिर भगवान वापस आ जाते हैं और सारे भक्त भूल जाते हैं कि भगवान कभी गए थे, और फिर से वही लीलाएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए एक दृष्टि से ये लीला वहां पर है और नहीं भी है। इसका वर्णन भी बृहद भागवत अमृतम में बड़े विस्तार से किया गया है कि कैसे जब अक्रूर जी आए तो क्या स्थिति हुई ब्रजवासियों की, और भगवान चले गए और फिर से वापस आ गए और फिर सब लोग भूल गए और फिर से वही लीलाएं प्रारंभ हो गई। लेकिन यहां पर जब ब्रह्मांड में इस यहां के गोलोक में या यहां के वृंदावन में जब लीला करते हैं तो भगवान जाते हैं और वापस नहीं आते। तो इसलिए नैमित्तिक लीलाओं और नित्य लीलाओं में अंतर होता है। हम लोग जो साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नैमित्तिक लीलाओं में ये जो असुरों का वध है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान की सभी लीलाएं महत्वपूर्ण हैं, मगर नैमित्तिक लीलाएं इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भगवान यहां उन लीलाओं को केवल हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए करते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशीं क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। क्यों करते हैं इन लीलाओं को, नैमित्तिक लीलाओं को? या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, इसको सुनकर, इससे ज्ञान प्राप्त करके, इसके निर्देशों को, इसके आदेशों को ग्रहण करके, इसके सार को ग्रहण करके तत्परो भवेत्, व्यक्ति इस भवसागर को पार कर ले। और ये हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। ये जो शब्द हम लोग सुनते हैं भवसागर पार करना, ये वैसे एक दृष्टि से देखें तो बड़ा कठिन है। जब जीव यहां से जाता है तो उसको कई सारे प्रलोभनों से पार होना पड़ता है। जैसे हम शुरुआत करते हैं यहां से अपनी यात्रा तो स्वर्ग आता है, नंदन कानन वन आता है, फिर आगे जन लोक, महर लोक, तप लोक, उसके बाद पृथ्वी के आवरण, पृथ्वी को, पृथ्वी के सारे जो ये ब्रह्मांड के आवरण हैं, वो आवरण भी बड़े ऐश्वर्यशाली हैं। एक एक आवरण में बहुत ऐश्वर्य है, बहुत आकर्षण है, और वो आकर्षित करते हैं। और फिर सबसे आखिरी आवरण जो इस भौतिक प्रकृति का आवरण है, वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक है क्योंकि उसके अधिष्ठाता देव या देवी है मोहिनी मूर्ति, और वहां पर बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। तो अगर जीव के हृदय में लेश मात्र भी भोग की इच्छा रह जाए तो पार नहीं हो सकता। जैसे श्रील प्रभुपाद समझाते थे कि अगर गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा हृदय में है तो वापस आना पड़ता है, बड़ा कठिन है। नारद मुनि ने एक बार प्रयास किया था, आप सबने वो सुना है, नारद मुनि ने कहा वैकुंठ पति से कि मैं बड़ा दुखी हूं इन जीवों को देखकर कलयुग में कितना कष्ट सह रहे हैं। दरअसल हम लोग जो सोचते हैं कि हम लोग बड़े सुखी हैं, कोई पद पा लिया, कोई धन पा लिया, हम बड़े राजा हो गए, बड़े सुखी हो गए, ऊपर से देवता हंसते हैं हम लोगों को देखकर कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है, वो देखो आगे मृत्यु आ रही है उसकी और यहां पर वो खुशियां मना रहा है। तो नारद मुनि भक्त होने के कारण बड़े दुखी थे, तो उन्होंने कहा भगवान से, और भगवान ने कहा ठीक है नारद, जितने भी लोगों को तुम लेकर आओगे उनको फ्री एंट्री दे दूंगा मैं, कोई टिकट नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई भक्ति नहीं, जो तुम्हारे साथ आएंगे उनको। ऐसा भगवान करते हैं, श्रील प्रभुपाद ने स्वयं बतलाया है कि अगर आप मेरे आंदोलन में रहोगे तो मैं आपको बैकडोर एंट्री दिलवा दूंगा, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रभुपाद ने बड़े साफ शब्दों में कहा है अपने अनुयायियों से, एक बार उन्होंने पूछा था हमारी क्या योग्यता है, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा आपकी कोई योग्यता नहीं है, मैंने आपको योग्य बनाया है भक्ति करने की, और यह सत्य है, कोई अहंकार नहीं है ये। तो नारद मुनि से कहा, नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए, आकर सारे पृथ्वी पर ढिंडोरा पीट दिया कि सबको मैं वैकुंठ ले जा रहा हूं, सब लोग चलिए जिसको जाना है, फ्री एंट्री। तो आपको पता है लोगों को जब कुछ फ्री मिलता है तो वो जरूर ले लेते हैं, सेल लगती है तो भीड़ लग जाती है, वैसे कोई दुकान में जाता नहीं है, तो सारे लोग अब वैकुंठ जाना है तो सब पीछे चल दिए, बहुत लंबी लाइन लग गई। अब नारद मुनि प्रसन्नता से कूदते नाचते भगवान का नाम लेते आगे चलते जा रहे हैं और सब लोग उनके पीछे, ऐसे करते करते वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ में पहुंचते ही नारद मुनि जोर से कीर्तन करने लगे, भाव विभोर हो गए। तो भगवान ने उनको रोका, पूछा भाई क्या हो गया नारद मुनि, क्यों इतना भाव विभोर? बोले आज मैंने इतने सारे लोगों को उद्धार कर दिया, सबको वैकुंठ ले आया, इसलिए बड़ा प्रसन्न हूं। तो भगवान ने पूछा किसको ले आए? तो नारद मुनि ने पीछे देखा तो एक भी व्यक्ति नहीं था। तो नारद मुनि ने, अरे क्या हो गया? तो नारद मुनि ने झांक कर पीछे देखा तो कुछ लोग स्वर्ग में लटक गए थे, कुछ लोग जन लोग महर लोग, कुछ आवरणों में, आधे से ज्यादा तो स्वर्ग में ही रह गए थे। तो इसलिए बड़ा कठिन है जाना, सरल नहीं है। इसीलिए ये जो नैमित्तिक लीलाएं हैं भगवान की, ये हम लोगों के लिए, साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद, माफ कीजिएगा हम तरफ विस्तार में जा रहे हैं, लेकिन ये सेमिनार ही इसलिए किया है कि हर चीज को विस्तार में करें, नहीं तो हर बार हम लोगों को कथाएं शॉर्ट करनी पड़ती हैं। समय हो गया, संडे लेक्चर 2:30 बजे खत्म करना है, 2:45 हो गया, लेकिन ये अभी 10 दिन तक हैं। जितने असुर मार सके मारेंगे, लेकिन विस्तार में जाएंगे ताकि जो भी समझें ठीक से समझें। तो श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर कहते हैं कि वे मूर्ख लोग हैं जो भगवान की रासलीला और उनके असुरों के वध की लीला को अलग अलग मानते हैं। ये रासलीला ही है, ये रासलीला और असुरों के वध में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए सब समान है। लेकिन साधकों के लिए रासलीला से ज्यादा असुरों का वध महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा मन दूषित है, हृदय दूषित है। हम जब रासलीला को देखते हैं तो हमारा देखने का दृष्टिकोण भौतिक कल्मश से भरा हुआ है, इसलिए हमें रासलीला में काम दिखाई देता है। लेकिन असुरों का वध, इसमें हमें कोई काम नहीं दिखाई देता। इसलिए कई बड़े बड़े व्यक्ति जो भागवत कथा करते हैं वो असुर के वध को ध्यान नहीं देते, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन रासलीला हाँ, अभी हम थोड़े समय पहले वृंदावन में थे, तो वृंदावन में हर जगह हमने देखा बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगती हैं, फला फला शास्त्री जी और ये फला फला व्यक्ति भागवत कथा अच्छा करते हैं, सब ठीक है, हम कोई उनसे द्वेष नहीं कर रहे हैं या कुछ कह नहीं रहे, लेकिन सब लोग रासलीला पर, वहां पर खास करके। उनमें कई ऐसे भी हैं जो प्रामाणिक हैं, जो अच्छा कहते हैं, जो अन्य विषयों पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन जितने अप्रामाणिक लोग हैं वो ज्यादातर रासलीला पर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को आकर्षित करती है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे लोग जो असुरों के वध और रासलीला को अलग अलग मानते हैं वो मूर्ख हैं, वो कृष्ण की लीला को समझे नहीं है। तो साधकों के लिए ये दोनों समान है, लेकिन हमें सार किससे ग्रहण करना है? दूषित मन, हृदय जो दूषित है, कलमश से भरा है, इससे हमें असुरों का जो वध है उससे निर्देश ग्रहण करने हैं, ताकि हम लोग अपने इस जीवन में अपने हृदय को शुद्ध कर सकें। ये हृदय का शुद्धिकरण ये बड़ा आवश्यक है। हम इस पूरे कोर्स में बार बार इस शब्द को दोहरा रहे हैं और आगे भी दोहराएंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य ही यही है कि हम हृदय को शुद्ध कर सकें। श्री श्री राधा गोकुलानंद से ये प्रार्थना है कि कम से कम बोलने वाले का हृदय तो शुद्ध हो जाए। सुनने वालों का तो होगा ही, क्योंकि बड़े ध्यान से सुन रहे हैं वो। तो इसीलिए ऐसी लीलाओं को जानना ये बड़ा आवश्यक है हम लोगों के लिए। वृंदावन में जिन असुरों का वध भगवान ने किया, वे किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं? वे उन अनर्थों का, उन बाधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे भक्ति मार्ग में आने वाली हैं, खास करके साधकों के लिए जो भी वैदिक भक्ति के मार्ग पर हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमें जो मार्ग दिया है वो सर्वोच्च मार्ग है। दरअसल श्रील प्रभुपाद ने हमें राग भक्ति दी है, सबसे ऊंचा स्तर कृष्ण प्रेम, ब्रज भक्ति। ब्रज भक्ति ये सर्वोच्च अवस्था है भक्ति की, और वो हमें श्रील प्रभुपाद ने प्रदान की है। लेकिन उस तक पहुंचने का मार्ग भी दिया है। अगर आपको कोई कुछ चीज प्रदान करे, जैसे हम आपको कोई एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम दें लेकिन आपको उसको चलाना नहीं आता, आप जानते नहीं है इसको खोलना कैसे है, इसको बंद कैसे करना है, इसका स्विच कहां है, तो आप क्या करेंगे? थोड़े समय में उसको तोड़ देंगे या उसको खराब कर देंगे। लेकिन अगर हम आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ ये भी बताएं कि इसको कैसे चलाना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, और इसका इस्तेमाल करके आप क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो आप उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें ब्रज भक्ति दी है, सर्वोच्च अवस्था, लेकिन साथ ही साथ उस तक पहुंचने का मार्ग वैदिक भक्ति दी है, कि जब तक आप वैदिक भक्ति का पालन नहीं करेंगे, ये जो ब्रज भक्ति का इंस्ट्रूमेंट मिला है आपको, उसको चला नहीं पाएंगे, उसको तोड़ देंगे, उसको खराब कर देंगे। और एक बार ये ब्रज भक्ति पाने का अवसर चला गया तो कई कई जन्मों तक ये फिर नहीं मिलेगा। हिंसा ये कई प्रकार की होती है। एक हिंसा होती है जहां हम व्यक्ति के शरीर को मारते हैं, ये भी हिंसा है। दूसरी हिंसा जहां हम मन के स्तर पर हिंसा करते हैं, ये भी हिंसा है। हम किसी का अपमान कर देते हैं, किसी को बुरा भला कह देते हैं, ये भी हिंसा है। लेकिन उससे भी बड़ी हिंसा है आत्मा के प्रति हिंसा। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनोजना। जो भी आत्मा के हत्यारे हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है इस जगत में। हजारों हजारों वर्षों तक असूर्या नाम ते लोका, ऐसे लोक में वो सड़ेंगे जहां पर सूर्य नहीं है, अज्ञान है, तमस है, अंधकार है, क्योंकि उन्होंने आत्मा की हत्या की। ये के च आत्महनोजना, आत्मा के हत्यारे हैं वो। तो ये सबसे बड़ी हिंसा है, और ऐसी हिंसा हम प्रतिदिन कर रहे हैं, और किसी के प्रति नहीं, अपने प्रति। तो इसीलिए ये बड़ा आवश्यक है कि हम इन बाधाओं को, इन अनर्थों को दूर करें, हृदय शुद्ध करें, प्रयास करें। कम से कम हृदय शुद्ध करना हमारे हाथ में नहीं है, भक्ति करना हमारे हाथ में नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हमारे हाथ में नहीं है, प्रयास करना हमारे हाथ में है, और फिर कृपा वो भगवान देंगे। लेकिन जैसा हमारा प्रयास होगा वैसी कृपा होगी। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे मेरे साथ आदान प्रदान करते हैं मैं भी वैसा ही करता हूं। तो इसीलिए इन अनर्थों को, इन बाधाओं को हमें अपने हृदय से निकालना है। भक्ति मार्ग में कई अवस्थाएं होती हैं। सबसे शुरुआत की अवस्था श्रद्धा। धीरे धीरे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। जब हृदय में श्रद्धा होती है तो फिर सत्संग, साधुओं का संग होता है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, और फिर उसके बाद भजन क्रिया। फिर जब भजन क्रिया करते हैं तो उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने कई तात्पर्यों में ये बात समझाते हैं कि जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती, व्यक्ति भक्ति में स्थिर नहीं हो सकता, निष्ठा नहीं आती। प्रभुपाद बताते हैं, एक प्रवचन में वो बतला रहे थे कि अगर कोई निष्ठा के स्तर पर आ गया तो फिर उसके लिए भगवत प्रेम पाना कोई कठिन नहीं रह जाता। हालांकि उसके बाद भी कई अवस्थाएं हैं, निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सारी अवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी जब तक कोई व्यक्ति इन अनर्थ निवृत्ति की स्थिति को पार नहीं करता तब तक वो भगवत प्रेम के लिए तैयार भी नहीं होता। इसीलिए हमने ये विषय चुना है। हालांकि ये बड़ा ऊंचा विषय है, अनर्थ निवृत्ति ये बहुत ही ऊंची स्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग पा नहीं सकते। हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जीवन भर बस सोला माला करते रहेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर 50% 50% घर, 50% भक्ति, और धीरे धीरे जीवन निकल जाएगा, भगवान की कृपा हुई तो गोलोक जाएंगे, नहीं तो फिर अगला जन्म है। हमें ये सोचना चाहिए कि एक ही जन्म है बस, इसके बाद और कोई अवसर नहीं है भक्ति के लिए। आप सोचिए कैसे मिलेगा, इस जन्म में भी कितनी कठिनाई से ये अवसर मिला है, हम सब जानते हैं इसको। कई लोग 20 वर्ष की उम्र में आए, कई 30, 40, 50, और जो लोग 50 वर्ष की उम्र में आए हैं वो शोक करते हैं कि क्यों हमारा जीवन 50 वर्ष व्यर्थ हुए, लेकिन हमें नहीं पता कि अगले जीवन में भी हो सकता है 50 वर्ष व्यर्थ हो जाए, हम भक्ति नहीं कर पाए। इसीलिए एक ही जीवन है, इसमें शुद्ध होना है, त्याग देना है सब कुछ, सारी आसक्तियां। इन आसक्तियों को लेकर हम कहां जाएंगे, केवल इस जगत में घूमेंगे। यह आसक्ति जैसे एक कोई चिपकने वाला पदार्थ होता है, आप किसी चीज पर लगा दीजिए और चिपका दीजिए तो वहीं चिपका रहता है, कहीं जाता नहीं। ये आसक्तियां ऐसे हैं, फेविकॉल, वो इस जगत में, इस जन्म मृत्यु के चक्र में चिपका कर रखते हैं और हम बड़े प्रेम से घूमते रहते हैं उसमें, तो छोड़ना चाहिए इनको, निकलना चाहिए बाहर। इसीलिए अनर्थों को त्यागना चाहिए, हृदय शुद्ध करना चाहिए। आपसे फिर प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक ये कोर्स समाप्त हो प्रयास कीजिए, थोड़ा सा जितना प्रयास करेंगे ये हृदय शुद्ध होगा, भगवान कृपा करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास आवश्यक है। तो इसीलिए श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। तो हम लोग इस कोर्स में कई लीलाओं को सुनेंगे और उन लीलाओं के विषय में विस्तार से चर्चा भी होगी। भौतिक कल्मश से मुक्ति या अनर्थ निवृत्ति जैसे हम कह रहे थे, ये अवांछित चीजों से अनासक्ति है। जैसे हम बतला रहे थे कि हमें ऐसी चीजें जो हमें बांध कर रखती हैं इस जगत में, उसको त्यागना चाहिए। थोड़ा सा तो हृदय शुद्ध करना चाहिए, थोड़ी सी तो, थोड़ा सा वैराग्य हृदय में लाना चाहिए। महाप्रभु रो भक्त गणे रो वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीति है ना गौर भगवान। भगवान कब प्रसन्न हुए, चैतन्य महाप्रभु कब प्रसन्न हुए, वैराग्य देखकर। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हृदय में हम इसको लाएं, और ये भक्ति की प्रगति की परीक्षा है। श्री प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं कि अगर हम भक्ति में कितनी प्रगति कर रहे हैं, इसकी परीक्षा कैसे करेंगे, इसकी परीक्षा होती है ये देखकर कि कितना हम लोग आसक्तियों से दूर गए हैं। तो अब हम लोग ये प्रमुख विषय, अभी तक तो हम लोग केवल परिचय कर रहे थे कि क्यों आवश्यक है, तो अब हम लोग प्रमुख विषय पर आते हैं कि अनर्थ क्या है और किन अनर्थों को हमें, इन असुरों को धीरे धीरे मारते हुए दूर करना है। हम लोग आज तो ये असुरों का वध प्रारंभ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अनर्थों के विषय को समाप्त करने का प्रयास करेंगे ताकि कल से असुरों का वध प्रारंभ कर सकें। तो चार प्रकार के अनर्थों के बादल होते हैं जो शुद्ध चेतना को ढक देते हैं, और ये हम चर्चा कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो भक्ति मार्ग में भी आने के बाद इन अनर्थों को बनाए रखते हैं। तो ये चार प्रकार के बादल कौन कौन से हैं? पहला बादल, जैसे सूर्य होता है लेकिन बादल उसको ढक देता है, इसी तरह शुद्ध कृष्ण प्रेम हृदय में है लेकिन ये चार प्रकार के बादल ये ढक देते हैं हमारी चेतना को। आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए और अगली बार से लिखने के लिए आप लोग लेकर आइएगा, क्योंकि ये कलयुग है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपदतः, तो हो सकता है कि अगली बार आपको ये याद नहीं रहे, स्मरण नहीं रहे, तो याद नहीं रहेगा तो पालन कैसे करेंगे। इसलिए प्रयास कीजिए कि नोटबुक लाकर उसको लिखें, ये पूरे जीवन के लिए हमारे काम आएगा, ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी तक, आगे भी कभी भी इस चीज़ को हम लोग खोल कर देखेंगे तो हमें स्मरण आएगा कि हम किस स्थिति में हैं, हम कहाँ हैं भक्ति मार्ग में। तो सबसे पहले अनर्थ होते हैं पूर्व पापमय कार्यों से उत्पन्न अनर्थ। भक्ति में आने से पहले हम लोगों ने कई पाप किए हैं, आशा करते हैं सबने किए होंगे, तो इन पापों से जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं वो पहले प्रकार के हैं, हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरे प्रकार के अनर्थ हैं पहले किए हुए पुण्यों से उत्पन्न अनर्थ। देखिए पाप से तो अनर्थ होते ही हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन पुण्य करने से भी अनर्थ होते हैं। तो हमने जो भक्ति में आने के पहले कुछ पुण्य किए हैं उनसे, या पिछले जन्म में जो पुण्य किए हैं उनसे जो उत्पन्न अनर्थ हैं वो भी हमारी चेतना को ढक देते हैं। तीसरे प्रकार के, सही प्रकार की भक्ति न किए जाने से उत्पन्न अनर्थ। जैसे हम लोग हो सकता है पिछले जन्म में भी भक्ति कर रहे हों या अब भी कर रहे हैं लेकिन ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, तो फिर उससे भी अनर्थ उत्पन्न होते हैं। और चौथे प्रकार के अनर्थ हैं जब हम भक्ति मार्ग में अपराध करते हैं तो उनसे जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं वो चौथे प्रकार के बादल। ये चार प्रकार के बादल हैं जो हमारी शुद्ध चेतना को ढक देते हैं। शुद्ध चेतना ये एक ऐसी चेतना है जो केवल कृष्ण में लगी होती है, इसको शुद्ध चेतना कहते हैं। अगर ये चेतना थोड़ा भी कृष्ण से विलग हो जाए, कृष्ण में न लगे, तो उसमें अशुद्धिकरण आ जाता है, तब वो शुद्ध नहीं रह जाती। लेकिन शुद्ध चेतना ये केवल कृष्ण में लगी रहती है, कृष्ण भक्ति करती है, कृष्ण सेवा करती है, और ऐसी शुद्ध चेतना हम सब की है, लेकिन केवल इन बादलों से ढके रहने के कारण हम उस कृष्ण प्रेम, उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो अनर्थ हैं, पापमय कार्यों से उत्पन्न अनर्थ, इनमें पांच प्रकार के क्लेश या भौतिक कष्ट हैं। ये सारे कष्ट, ये क्लेश उत्पन्न होते हैं हमारे पूर्व पाप कर्मों से। पहला अविद्या। अभी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, अनुमति चाहते हैं। समय काफी हुआ है, आज हम लोगों ने बहुत देर से प्रारंभ किया, 8:10 हो रहे हैं इस समय। हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करें या जल्दी जल्दी आगे जाएं? विस्तार से करें, तो हो सकता है कि कल भी पूतना वध नहीं हो, तो ठीक है चलेगा, पूतना को एक दिन और जीने दें, तो फिर विस्तार से करेंगे तो अच्छा है, हम लोग जान सकेंगे। तो सबसे पहला है अविद्या। अविद्या का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान याने जो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत चीजें हैं उनको शाश्वत मानना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और इस अज्ञान से बाकी सारे अज्ञान उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये हमारा मूल अज्ञान है, मिथ्या अहंकार। जब इस भौतिक जगत की रचना होती है तो धीरे धीरे कई तत्व आते हैं, लेकिन सबसे पहला और सबसे सूक्ष्म तत्व है मिथ्या अहंकार। ये बहुत घुला मिला हुआ है हमारे अस्तित्व में, जैसे आटा आटा गूंदा जाता है, उसको बोलते हैं मराठी में क्या बोलते हैं आटा गूंदने को? हाँ, पीठ मलना। हाँ, तो हम लोग पानी डालते रहते हैं उसमें, फिर आटे में मिलाते रहते हैं, मिलाते रहते, फिर वो बन जाता है। अब वो जो गूंधा हुआ या जो मला हुआ आटा है, उसमें से आप पानी निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं? लेकिन थोड़े समय पहले पानी नहीं था उसमें, पानी हमने डाला, लेकिन अब पानी नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत मिल गया है पूरा उसमें। इसी तरह ये मिथ्या अहंकार, ये हमारे अस्तित्व में मिल गया है पूरा। इसीलिए ये सबसे बड़ा अज्ञान है। अगर ये अज्ञान से कोई व्यक्ति दूर हो जाए तो फिर बाकी सारी चीजें अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये सबसे सूक्ष्म चीज है, मिथ्या अहंकार। अशाश्वत को शाश्वत मानना, इस शरीर को शाश्वत मानना, इस जगत को शाश्वत मानना, अपने अस्तित्व को, इस भौतिक अस्तित्व को शाश्वत मानना। जीव का अस्तित्व शाश्वत है, लेकिन भौतिक अस्तित्व शाश्वत नहीं है। यह भौतिक जगत जो हम लोग देखते हैं, यह भी शाश्वत है भी और नहीं भी। यह भौतिक प्रकृति शाश्वत है, लेकिन यह जो भौतिक जगत है यह शाश्वत नहीं है। इसका एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। हम लोग को हमें आपकी शक्ल देखकर समझ में आ रहा है कि किसी को यह समझ में नहीं आया है। सही बात है, सही है कि गलत है? भौतिक प्रकृति शाश्वत है, लेकिन यह भौतिक जगत जो है शाश्वत नहीं है। इसको टेम्परेरी कहते हैं, अशाश्वत, प्रकट होता रहता है, जाता है। इसका उदाहरण देते हैं। आप लोगों ने कुम्हार को देखा है जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, तो उसके मिट्टी के बर्तन बनाने में तीन चीजें होती हैं, एक कुम्हार, दूसरा वो मिट्टी लेता है और फिर वो पहिए पर घुमाकर वो मटका बना देता है। अब ये जो मटका है ये किससे बना है? मिट्टी से। मिट्टी हमेशा रहती है, मटका बनता है फिर फूट जाता है, टूटने के बाद कहां जाता है? मिट्टी में। तो मिट्टी हमेशा रहती है, लेकिन मिट्टी से बना हुआ मटका ये शाश्वत नहीं है। सही है, मिट्टी शाश्वत है, हमेशा उधर ही है। वो मटका बनता है, थोड़े समय में टूट जाता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है, फिर से बन जाता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मिट्टी हमेशा रहती है, मटका बनता है जाता है। इसी तरह ये जो भौतिक जगत है ये उस मटके के समान है, जो बनता है और समाप्त हो जाता है, फिर बनता है फिर चला जाता है, फिर बनता है चला जाता है। लेकिन जो मिट्टी है उसको बनाने वाली भौतिक प्रकृति, भगवान की शक्ति, वो शाश्वत है। तो इसीलिए इस चीज को हमें बड़े ध्यान से समझना चाहिए कि क्या शाश्वत है और क्या अशाश्वत है। इस जगत में हमारा भौतिक अस्तित्व ये शाश्वत है या अशाश्वत है? हमारा ये शरीर शाश्वत है या अशाश्वत है? और फिर इन सारे चीजों को, इसको सांख्य योग कहते हैं, आत्मा और पदार्थ के विश्लेषण का ज्ञान, ये सांख्य योग कहलाता है। तो इसको ज्ञान लेना, इसको जानना, और फिर जानने के बाद क्या करना? जानने के बाद ये सोचना कि किसको पकड़ना है। चाणक्य के पंडित एक बहुत सुंदर बात बतलाते हैं। वो कहते हैं कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है जिसने अशाश्वत चीजों को पकड़ रखा है, शाश्वत चीजों को छोड़ दिया, शाश्वत चीजों को छोड़ा है अशाश्वत चीजों को पकड़ने के लिए। क्यों मूर्ख है? क्योंकि शाश्वत चीज को छोड़ दिया है, वो चली गई है, अशाश्वत चीज को पकड़ कर रखा है जो कुछ समय तक रहने वाली है, इसीलिए सबसे बड़ा मूर्ख है। तो ये अज्ञान को दूर करना ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हम लोग जाने कि शाश्वत क्या है और अशाश्वत क्या है। श्रील प्रभुपाद अपने प्रायः सभी प्रवचनों में इस एक विषय पर बहुत जोर देते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। बड़े बड़े सन्यासी बैठे होते थे प्रभुपाद के सामने और प्रभुपाद प्रवचन करते थे, वो सन्यासी जो बाहर अनेक देशों में जाकर प्रचार कर रहे हैं और प्रभुपाद उनको प्रवचन देते थे, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्योंकि ये मूल ज्ञान है। एक बार प्रभुपाद ने पूछा कि सारे सन्यासी शिष्य बैठे थे, प्रभुपाद ने उनकी ओर देखकर पूछा, आप में से कितने लोग इस बात को पूरी तरह मानते हैं कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है? किसी ने जवाब नहीं दिया। क्योंकि ये जानना बोलना अलग बात है, लेकिन साक्षात्कार ये बहुत कठिन है, ये अज्ञान को दूर करना चाहिए। तो ये सबसे पहला चीज है अज्ञान, जो हमारी चेतना को, हमारी आत्मा को, हमारे शुद्ध कृष्ण प्रेम को आवृत कर देता है, ढक देता है, और उस ढकने के कारण हम असली चीज को छोड़ देते हैं, शाश्वत अपने अस्तित्व को छोड़ देते हैं, कृष्ण प्रेम को छोड़ देते हैं, उस आनंद को छोड़ देते हैं जो जीव का स्वभाव है, और इसीलिए कष्ट भोगते हैं। अहम भ्रमी भ्रमी भ्रमे भोगे शोक पाए, अहम मम भ्रमी भ्रमे भोगे शोक पाए। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये अहम और मम, मैं और मेरा, जब इस भाव में रहकर भोगे भोग करते हैं तो शोक पाए, कष्ट पाते हैं। अगर इससे परे हो जाए तो कोई कष्ट नहीं है जीवन में। तो इसलिए ये सबसे पहली चीज हमारे हृदय से निकलनी चाहिए, अज्ञान। दूसरा अस्मिता। अस्मिता यानी मिथ्या अहंकार, देहात्म बुद्धि, इंद्रियों द्वारा शासन को स्वीकारना। देहात्म बुद्धि का अर्थ है कि हम केवल इस शरीर से आसक्त रहें, ये जो शरीर है यही सब कुछ है और इसी से हमें सब कुछ प्राप्त होने वाला है, यही हमें सुख देगा, इस चीज को मानना। इसको कहते हैं इंद्रियों के द्वारा शासित होना, अर्थात इंद्रियां हमारी शासक बन गई हैं, हम इंद्रियों के शासक नहीं हैं। एक समय श्रील प्रभुपाद कहीं जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो कई जैसे भी श्रील प्रभुपाद को कई लोग देखते थे, कोई नए लोग भी जो जानते भी नहीं थे वो आकर प्रणाम किया करते थे। तो प्रभुपाद ने पूछा कि जानते हो ये लोग मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो सब भक्त, जब प्रभुपाद प्रश्न पूछा करते थे तो सारे भक्त वो घबरा जाते थे, बड़े बड़े सन्यासी डंडा लेकर चल रहे, लेकिन प्रभुपाद ने प्रश्न पूछा तो, क्योंकि प्रभुपाद के प्रश्न ऐसे होते थे। एक समय वृंदावन में प्रभुपाद ने प्रश्न किया, कृष्ण बलवान है या बलराम बलवान है? तो सारे सन्यासी वहां पर, बड़े बड़े प्रचारक सारे जगत में प्रचार कर रहे हैं कृष्ण भक्ति का, वो घबरा गए, क्या बताएं, क्योंकि प्रभुपाद को बोलना बड़ा कठिन होता था, क्योंकि प्रभुपाद अगर कुछ भी गलत बोला, जैसे एक समय एक सन्यासी प्रवचन दे रहे थे, प्रभुपाद सुन रहे थे पीछे बैठे, उसने बोला, उन्होंने बताया कि कृष्ण के नाम में, इस नाम में कृष्ण है, तो प्रभुपाद ने उनको रोका, कहाँ है कृष्ण नाम में? तो बेचारे घबरा गए, प्रभुपाद ने कहा नाम में कृष्ण नहीं है, नाम ही कृष्ण है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को भी प्रभुपाद पकड़ा करते थे। तो उन्होंने पूछा कृष्ण बलवान है कि बलराम जी बलवान है? तो अब सोचने लगे सब लोग, कृष्ण ने कौन से असुर को मारा, बलराम जी ने कौन से असुर को मारा, ये बातें वो बातें, क्या बताएं, सब सोच रहे। प्रभुपाद ने फिर पूछा, बताओ कृष्ण बलवान है या बलराम जी? सब लोग सोचने लगे, बलराम ने ऐसे घुमाकर फेंका था उस असुर को, और कृष्ण ने भी मारा था, कृष्ण कालिया के ऊपर नाच रहे थे, ऐसे सब। तो एक किसी ने धीरे से बताया, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान है। तो ऐसे करते करते एक ने उत्तर दिया कि बलराम जी ज्यादा बलवान है, बड़े भाई हैं, दाऊ जी हैं, उनका नाम भी बलराम है। तो प्रभुपाद हंसने लगे और प्रभुपाद ने कहा, बड़ी सरल सी बात है, देखो कृष्ण बलराम को, हाँ ये सत्य है कि बलराम जी बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी सारी शक्ति का भार कौन वहन कर रहा है, किसके कंधों पर हाथ रखकर खड़े हैं? कृष्ण के। तो कौन बलवान है? उनका कृष्ण बलवान है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जब प्रश्न किया करते थे, तो श्रील प्रभुपाद ऐसे प्रश्न पूछते थे कि आप लोग जानते हैं ये साक्षात्कार है। तो ऐसे ये प्रभुपाद इसलिए कहा करते थे ताकि सबको ये विश्वास, ये जो देहात्म बुद्धि है, इससे दूर जाए, इंद्रियों के शासक नहीं बने। तो प्रभुपाद ने बताया कि ये जो सब लोग मुझे प्रणाम करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि मेरी इंद्रियां संयम में हैं। रिनाउंसिएशन, त्याग, ये बहुत बड़ा आकर्षण है, ये ऐश्वर्य है भगवान का, और ये आकर्षित करता है। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों के द्वारा शासित होता है, वो कभी कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कृष्ण भक्ति? इंद्रियों के द्वारा तो सभी शासित हैं इस जगत में, तो क्या कोई कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता? नहीं, जब तक इंद्रियों को वश में नहीं करते। इसीलिए उपदेशामृत की शुरुआत में रूप गोस्वामी यही बात बतलाते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा जो व्यक्ति इन सारे वेगों को, इंद्रियों के वेगों को वश में करता है, वो गुरु बनने लायक है। सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्, वो सारी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। और प्रभुपाद ने किया, उन्होंने दिखलाया। रूप गोस्वामी के इस एक पहले उपदेशामृत के पहले ही श्लोक को सत्य कर दिखाया, उन्होंने वश में किया और सारी पृथ्वी पर शिष्य बनाए। तो इसीलिए इंद्रियों के द्वारा हमें शासित नहीं होना है, हमें इंद्रियों पर शासन करना है, इंद्रियों को वश में करना है। हमारी इंद्रियां भागती हैं और हम सब जानते हैं भक्ति मार्ग में आने पर भी कितना कठिन होता है इंद्रियों को वश में करना। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति भक्ति में आ गया पहले दिन से और दूसरे दिन शुद्ध हो गया, सारी इंद्रियां वश में। ये कभी कभी होता है, ये शुरुआत की अवस्था है, ये लॉलीपॉप है भगवान के द्वारा दी हुई। जब कोई भक्ति करता है, जैसे बच्चे को एक लॉलीपॉप दी जाती है, तो भगवान शुरुआत में दे देते हैं। भक्त समझने लगता है मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया, मेरी इंद्रियां वश में है, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई काम वासना नहीं है हृदय में, कोई इच्छा नहीं है, केवल कृष्ण भक्ति। 6 महीने बाद सब समाप्त, क्योंकि अनर्थ बाहर आते हैं, इंद्रियां शासन करती हैं। भगवान थोड़ा सा आनंद देते हैं, जैसे नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने कड़ी तपस्या की, भगवान प्रकट हुए उनके सामने क्षण भर के लिए, फिर चले गए। नारद प्रयास कर रहे हैं, भगवान ने कहा नहीं, अब ये जो आनंद तुम्हें मिला, अब इसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। तो वही शुरुआत में भक्ति का आनंद, और फिर भगवान कहते हैं अब इस आनंद को शाश्वत रूप में चाहते हो तो प्रयास करो, अनर्थों को निकालो। और यही कारण है कि शुरुआत में हमें भक्ति बहुत अच्छी लगती है, भक्त अच्छे लगते हैं। मंदिर में आते ही ऐसा लगता है कि हम वैकुंठ में हैं, लेकिन वही मंदिर कुछ समय बाद हमारे लिए बोझा हो जाता है, अनर्थों का बोझा है। मंदिर बोझा नहीं है, मंदिर वही है, लेकिन बोझा अनर्थों का है। जैसे कई बार उदाहरण देते हैं, विशेष करके गोविंद प्रभु कई बार ये लेक्चर्स में उदाहरण ईंट का देते हैं, कि एक ईंट को अगर आप ऐसे पकड़ कर रखे हैं, थोड़े समय पकड़ने के बाद वो भारी लगने लगती है। ईंट भारी नहीं है, ईंट उतना ही वेट है उसका, वो भारी नहीं हो गई है, लेकिन हाथ दर्द करने लगे। भक्ति ये कोई कष्टदायक नहीं है, लेकिन हम लोग जिस मार्ग का पालन कर रहे हैं, जो अनर्थों को लेकर चल रहे हैं, तो वो उस ईंट को भारी बना देता है, भक्ति को भारी बना देता है। तो इसीलिए ये जो दूसरा इंद्रियों द्वारा शासन, इससे हमें दूर जाना चाहिए। ऑफकोर्स ये बहुत विशाल विषय है कि कैसे इंद्रियों को वश में करना है, कैसे इंद्रियों के द्वारा शासित नहीं होना चाहिए। लेकिन सार में कि इंद्रियां जब हमारे ऊपर वश करती हैं, हमारे ऊपर शासन करती हैं, तो हमारा मन ये भौतिक रहता है, हमारी इंद्रियां भौतिक होती हैं। लेकिन जब हम उनको वश में कर शुद्ध चेतना की ओर अपनी जो बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि को जागृत करते हैं, तब हम भगवान की ओर जाते हैं। नच भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि अगर हमारी बुद्धि नास्ति बुद्धिर युक्तस्य नचायुक्तस्य भावना, वो बताते हैं कि हमें शांति कैसे मिलेगी। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, एक ही श्लोक में भगवान ने शांति का सूत्र दिया है। वो बताते हैं कि अगर हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति अशांत है उसको सुख कहां से मिलेगा, मिल सकता है क्या? इसलिए पहले शांत होना चाहिए। शांत होने के लिए क्या करना चाहिए? बड़ा सरल है, मन को वश में करना है, मन को वश में करना। अर्जुन कहते हैं चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ़, मैं वश में नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं मन को वश में करने का एक मार्ग है अपनी आध्यात्मिक चेतना को पुनः जागृत करना। और आध्यात्मिक चेतना पुनः जागृत कैसे होती है? जब हम अपने आप को जोड़ते हैं योग के द्वारा भगवान से, परम आत्मा से जोड़ना। और परम आत्मा से कैसे जोड़ते हैं? सततम कीर्तयंतो माम, सतत भगवान का कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके द्वारा हम अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं और अपनी चेतना को आध्यात्मिक बनाते हैं, और इस आध्यात्मिक चेतना के द्वारा मन को वश में करते हैं। मन को वश में करने के द्वारा हमें शांति मिलती है, सुख मिलता है, और जब शांति मिलती है तो हम बड़े सुखी रहते हैं। तो इस तरह से भगवान वर्णन करते हैं। तो इसलिए इंद्रियों को हमें वश में करना चाहिए। आगे चर्चा करें कि 8:25 हो रहे हैं, चर्चा जारी रखें। बहुत कम लोगों ने बोला कि ज्यादा लोगों ने बोला, हमें सुनाई नहीं। ठीक है, हम लोग आपसे जबरदस्ती भी कराएं तो भी कोई बात नहीं। आप बोलेंगे जबरदस्ती आप बोल रहे हैं इसलिए हरि बोल बोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये महत्वपूर्ण विषय है, सुन लीजिए, लेकिन ज्यादा समय नहीं लेंगे। और उसके बाद ये केवल ये 5 चीजों को चर्चा करके समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी और अगले बादल कल करेंगे, और फिर भगवान का कीर्तन और सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। आप लोग प्रसाद लेके जाइएगा। तीसरा है राग। राग यानि आसक्ति। कैसी आसक्ति? भौतिक सुख की कामना की आसक्ति और उसे पाने के साधन की लालसा, इसे राग कहते हैं। कि हम लोग अपने जीवन भर अगर अपना जीवन देखें तो हम क्या करते हैं जीवन में? कुछ भौतिक सुख की कामना और उस सुख को पाने के लिए सुविधाओं को जुटाना, यही हमारा जीवन है। कम से कम भक्ति में आने से पहले तक तो हम यही करते थे, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी यही करते हैं, क्योंकि भक्ति में जिस सुख की कामना हम कर रहे हैं वो भौतिक सुख है। क्योंकि हमारा दूषित मन इस समय इंद्रिय सुख को छल से हमें ये विश्वास करने के लिए बाध्य कर रहा है कि वो आध्यात्मिक सुख है। दरअसल हम आध्यात्मिक सुख की कामना नहीं कर रहे हैं, हम केवल भौतिक सुख की कामना कर रहे हैं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन ये छल रहा है, धोखा दे रहा है, और हमें ये समझा रहा है कि ये जिस सुख की कामना आप कर रहे हो यही आध्यात्मिक सुख है। और फिर हम उस सुख के लिए सुविधाएं, योजनाएं बनाते हैं। तो इसलिए ये राग, ये आसक्ति बढ़ाता है, ये कम नहीं करता है। और ऐसी आसक्ति हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थों को जन्म देती है। फिर द्वेष, द्वेष दुख और उसके स्रोत से। हम किससे द्वेष करते हैं? द्वेष क्यों उत्पन्न होता है? कोई व्यक्ति अगर हमें दुख देता है हम उससे द्वेष करते हैं, कोई स्थिति हमें दुख देती है हम उससे द्वेष करते हैं, अन्यथा द्वेष क्यों आएगा? कोई भी व्यक्ति अगर हमें थोड़ा सा दुख दे दे तो हम उससे द्वेष करने लगते हैं। तो इसलिए दुख, दुख से भी द्वेष है हमें, हम दुख नहीं चाहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुख चाहता है? कोई नहीं। कोई नहीं कहता कि मेरे जीवन में केवल दुख आए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये प्रार्थना है लोगों की। भक्ति क्यों कर रहे हैं? सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, दोनों चीजें। देखिए कितना, अगर हम इस लाइन को, माफी चाहते हैं अगर कोई आप लोग इसको रोज गाते हैं तो भी, हाँ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तन का कष्ट होगा तो मैं सुख संपत्ति का भोग नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए सुख संपत्ति के साथ साथ कष्ट मिटे तन का। तन का कष्ट भी नहीं होना चाहिए ताकि जो सुख संपत्ति आप दे रहे हैं उसका मैं बड़े आराम से भोग कर सकूं। ये हमारी प्रार्थना है भगवान से। तो ऐसे जब चीजें नहीं मिलती हैं, जब दुख मिलता है तो द्वेष। और फिर अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब ग्रहित स्वभाव, शारीरिक अस्तित्व में मग्न और मृत्यु का भय। ग्रहित मतलब किसी चीज से ग्रहित, ग्रसित हो जाना। जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में बताया जाता है, वो भी ग्रहित हो गए थे, ग्रहण, उनको ग्रह ने ग्रसित कर लिया था। कृष्ण ग्राही, कृष्ण नाम के ग्रह से ग्रहित हो गए थे वो। तो हम लोग ग्रहित हो जाते हैं, ग्रहित स्वभाव। कैसे ग्रहित? भय से ग्रहित। इस जगत में सब भयभीत हैं, सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है, व्यक्ति बचना चाहता है। छोटा सा बालक भी मां के गर्भ में भी अपने आप को बचाना चाहता है, भयभीत होता है। एक, हमने कई बार बताया, एक पिक्चर बनाई है, उस समय का दृश्य लिया है जब मां के गर्भ में गर्भपात किया जाता है और जब वो इंस्ट्रूमेंट जाता है उसको काटने के लिए, तो कैसे बच्चा पीछे जाता है, मुंह खोलता है, चिल्लाता है, कोई सुनता नहीं है, तो उस समय भी वो भयभीत है मृत्यु से, मां के गर्भ में, और मृत्यु तक भयभीत रहता है। जानता है मृत्यु आ रही है, लेकिन फिर भी भयभीत। केवल भक्त हैं जो भय से परे हैं, जो मृत्यु के सर पर पांव रखकर चले जाते हैं, उन्हें भक्त कहते हैं। भक्त को भी मृत्यु आती है, अभक्त को भी मृत्यु आती है। दोनों में अंतर क्या है? भक्त मृत्यु के समय भयभीत नहीं होता, लेकिन अभक्त बड़ा भयभीत होता है। वो देखता है काल आ रहा है, अलग अलग विचित्र चीजें दिखाई देती हैं, चिल्लाता है, मल मूत्र त्याग करता है, लेकिन भक्त प्रसन्नता से भगवान के चरण कमलों पर, भगवान के मुखारविंद पर अपने नेत्रों को केंद्रित करते हुए देह त्यागते हैं। कितने उदाहरण हम लोग देख रहे हैं इस्कॉन के, इतने सारे भक्तों के विषय में हमने सुना है। ऐसे भी भक्त जो कोई बहुत बड़े बड़े सन्यासी नहीं है, केवल आंदोलन में हैं, लेकिन वो भी जब अपना देह त्यागते हैं तो कोई भय नहीं। श्रील प्रभुपाद की कृपा है। तो इसीलिए ग्रहित जीवन, ग्रहित स्वभाव, हमारा जो स्वभाव है वो भय से ग्रहित हो गया है। दरअसल हमारे स्वभाव में भय नहीं होना चाहिए। आत्मा ये निर्भय है, अभय चरणार विंदरे, ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन आत्मा ग्रहित होने के कारण सदैव भयभीत, सदैव भय लगा रहता। अपने धन को चले जाने का भय, अपनी स्थिति का चले जाने का भय, और सबसे बड़ा अपने जीवन के चले जाने का भय। आप देखिए कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा बलवान हो, लेकिन जब उसके मृत्यु का भय होता है, वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाता, सबसे बड़ा त्यागी बन जाता है उस समय। जैसे हम लोगों ने कई बार देखा है कि अगर मृत्यु के समय उसको बोला जाए कि ये दे दो नहीं तो गोली मार दूंगा, आप जाइए किसी के, मतलब जाइएगा नहीं, आप सोचिए किसी को बंदूक लेके दिखाइए और उसको बोलिए कि जितना पैसा है जेब में, तो तुरंत दे देगा। वो ये नहीं सोचेगा अरे मैं कल खाऊंगा कहां से, ये पैसा मैंने बड़ी मेहनत से कमाया, क्योंकि मरने वाला, आप जो मांगे वो दे देंगे भय के कारण। तो कितना बड़ा मृत्यु का भय है व्यक्ति को, ग्रसित है हमारा स्वभाव। और हमारा स्वभाव क्या है? सत चित आनंद। हम शाश्वत हैं, आत्मा शाश्वत है, कभी मृत्यु नहीं होती, लेकिन ग्रसित स्वभाव भयभीत है। यानी जो चीज होने नहीं वाली है उससे भयभीत है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। जैसे एक भिखारी है, वो भयभीत रहे कि मेरा घर लूट जाएगा। अरे भिखारी है, उसके घर में कुछ है ही नहीं लूटने के लिए, तो क्या भय है उसको? हम लोग एक बार तिरुपति गए थे, तो तिरुपति में जब मंदिर से हम लोग चलने लगे ऊपर की ओर जाने के लिए, तो रास्ते में कुछ झोपड़ियां भी नहीं कह सकते उनको, कुछ लोगों ने अपने वो जो बोरी होती है ना, प्लास्टिक की जो बोरी आती है पैक, क्या बोलते हैं उसको, तट्टी तट्टी बोलते हैं ना, उससे घर बनाए हुए हैं। यानी केवल ऐसे चार दीवारी, तो आप जानते हैं उसको तो क्या, कोई भी ब्लेड मारेगा वो सारा घर समाप्त उनका, ऐसा घर है उनका। लेकिन उसमें भी हमने देखा कि आगे उसने एक लकड़ी का दरवाजा बना के उस पर लॉक लगाया हुआ है। हमने दिखाया भक्तों को, ने कहा देखो ये है हमारी स्थिति, वो गुबोनी का तट्टी का घर है, आगे ताला के पीछे से ऐसा ब्लेड मारा तो सारा घर चला जाएगा, लेकिन फिर भी आगे से लकड़ी का दरवाजा लगा के उसको लॉक मारा हुआ उसने। देखिए ये हमारी स्थिति है। तो ये मृत्यु का भय, जो चीज हमें आनी ही नहीं है, जो हमारे पास है ही नहीं, हमारा स्वभाव नहीं है, उससे भयभीत है। कितनी बड़ी मूर्खता है हमारी। इसको कहते हैं अभिनिवेश, अभिनिवेश। मृत्यु आने वाली नहीं है लेकिन भय है। तो इसलिए ग्रहित स्वभाव है हमारा। तो ये पांच प्रकार के क्लेश या भौतिक कष्ट हैं जो हमें पूर्व पापमय कार्यों से उत्पन्न अनर्थ को प्रकट, हमारे लिए प्रकट करते हैं इस जीवन में। और फिर ये सारे अनर्थ हमारे शुद्ध कृष्ण प्रेम को, चेतना को ढक देते हैं, और फिर हम लोग सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है। भक्ति मार्ग में भी अगर कोई गलत कार्य भी करते हैं तो हमें लगता है मैं जो कर रहा हूं वही सही है, बाकी सब गलत हैं। क्योंकि स्वभाव ग्रहित हो गया है, हमने अपनी जो चेतना है उसको गलत जगह पर लगाया है और अशाश्वत को शाश्वत समझते हैं, देहात्म बुद्धि में है, इस कारण से हम असली चीज को त्याग देते हैं और ऐसी चीजें अनर्थों को उत्पन्न करती हैं। तो ये पहला ही बादल है केवल, अभी और तीन प्रमुख बड़े बड़े बादलों की चर्चा भी करनी है। तो कल आप लोगों से विनती है कि आप लोग थोड़ा जल्दी आए, आज पहला दिवस था इसलिए समय भी देर हुआ, शुरू करते करते 7:20 हो गया था। कल आप लोग अगर 6 बजे आ सकें, क्योंकि ये विषय बड़े विस्तार से हम लेना चाहते हैं और जितना ज़्यादा समय मिले, रात को ज़्यादा समय ले नहीं सकते क्योंकि आप लोगों को भी वापस जाना होता है, तो अगर 6 बजे आप लोग आ सकें तो हम इसको 6 बजे कल प्रारंभ करना चाहेंगे, ताकि कम से कम 8-8:30 बजे तक किसी तरह प्रयास करके पूतना का वध कर दें। कल बड़ी इच्छा है पूतना का वध करने की, वैसे होगा या नहीं होगा ये तो कृष्ण के हाथ में है। आज भी हमने सोचा था ये केवल 3 या 4 स्लाइड्स आपको दिखा पाए, हमने आज के प्रवचन के लिए 31 स्लाइड्स बनाई थी, हमने सोचा था आज इतना हो जाएगा, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी। लेकिन ये भी अच्छा है, जो भी समझे विस्तार में सीखे, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी ऐसे सेमिनार होते हैं समय की कमी के कारण हम लोग जल्दी 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 कर देते हैं, तो आधा ऊपर से चला जाता है, आधा जो अंदर जाता है वो दूसरे कान से निकल जाता है, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है तो वो भी, आजकल कलयुग है, बदहजमी हो जाती है लोगों को, वो भी चला जाता है। तो इसीलिए विस्तार से करेंगे। तो कल आप लोग 6 बजे आ सकते हैं, आप लोग सब कितने लोग आ सकते हैं, जोर से हरि बोल कहिए। बहुत कम लोग आ सकते, ज्यादा लोग नहीं, सब लोग को तकलीफ है, कितने लोग नहीं आ सकते 6 बजे, हाथ ऊपर कीजिएगा प्लीज। 4, 5, 6, कितने बजे तक? 6:30 ठीक है? 6:30 ठीक है, बट बहुत देर हो जाएगी फिर, 6:30 से 8:30 दो ही घंटा मिलेगा, ठीक है? तो फिर 6:30 प्रवचन शुरू कर देंगे, 6:15 बजे कीर्तन और 6:30 प्रवचन, ठीक है? तो आप लोग जो 6 बजे आ सकते हैं कृपया 6 बजे ही आइए, तो ज़्यादा लोग होंगे तो 6 बजे 6:15 बजे कीर्तन शुरू करके 6:30 एग्जैक्टली प्रवचन शुरू हो जाएगा, ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई टीका, लाइट्स ऑन कीजिएगा प्लीज, किसी के कोई प्रश्न कोई टीका टिप्पणी है तो कर सकते हैं। यस प्रभु जी, माइक है, माइक दीजिएगा पीछे।
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।
अभी आप शांति का फार्मूला बता रहे थे,
हाँ जी,
वैसे भी एक बार जो जी बोल रहे थे शांति का फार्मूला, एक श्लोक, यज्ञा भोक्ता यज्ञ तपसा
सर्वलोकैकमेश्वरम्
शांति पृच्छति, वो तो फार्मूला ऐसा बोल रहे थे आज वो
दोनों ठीक हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये हमें जानना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसको जानकर क्या करना चाहिए ये इस श्लोक में बताया कि कैसे अपनी चेतना हमें कृष्ण में लगानी चाहिए। जब तक हम भोक्ता राम यज्ञ तपसाम नहीं जानेंगे तब तक हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को कृष्ण से क्यों जोड़ना चाहेंगे? तो इसलिए पहली चीज ये जानना कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, लेकिन उसको जानने के बाद किस प्रकार से हमें उसको समझना है या उसमें अपनी चेतना लगानी है, ये श्लोक में भगवान बता, अशांतस्य कुतः सुखम्। और वैसे इतने सारे श्लोक हैं, ये प्रमुख श्लोक हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो शांति के सूत्र दे सकते हैं, क्योंकि शांति भी ऑफ कोर्स किस तरह की और कैसे स्तर की, तो अलग अलग स्तर की शांतियों के लिए अलग अलग स्तर के श्लोक दिए गए हैं भगवान ने, और भगवद गीता में ही है। लेकिन ये सही है कि भोक्ता राम यज्ञ तपस्या में ये शांति बतलाता है, लेकिन वो प्राथमिक स्तर है। फिर उसके बाद भक्त को क्या करना चाहिए, ये आपको पता हो गया कि कृष्ण ही सारे चीज़ों के भोक्ता हैं, तो फिर उनसे जुड़ने का प्रयास। तो इसीलिए दोनों जुड़े हुए श्लोक, ठीक है? और कोई प्रश्न है? माता जी का प्रश्न, पीछे माइक दीजिए।
ये भौतिक शरीर मिला है हमें इस शरीर इस जगत में,
हाँ जी,
तो जब इस शरीर से ही हम इस आत्मा को पहचान सकते हैं तो इससे भी आसक्ति हो जाती है, शरीर से भी,
हाँ जी,
इस शरीर से आसक्ति होती है तो इसी से ही हम उस आत्मा तक आत्मा को पहचान सकते हैं, तो क्या किया जाए?
शरीर हमें मिला है ये सही है कि आत्मा के ज्ञान के लिए मिला है, लेकिन इससे आसक्ति होना ये जरूरी नहीं है आत्मा के ज्ञान के लिए। आप ये कह रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान के लिए इससे आसक्ति हो जाती है?
नहीं नहीं, अभी ये भौतिक शरीर है तो ये इसमें ये दुख सुख रहता है तो इसको संभालना पड़ता है, शरीर,
हाँ जी,
और नहीं संभालेंगे तभी भी नहीं चल सकते,
हाँ,
तो
नहीं, ये सही है कि हमें शरीर को संभालना चाहिए लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शरीर को जितनी आवश्यकता है वो पूर्ति करनी चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी है, आपकी कार आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप कार को ठीक नहीं रखें, उसमें पेट्रोल नहीं डालें, पानी चेक नहीं करें, ऑयल चेक नहीं करें, तो जब आपको जाना है तो इस्तेमाल नहीं होगी, तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जितना गाड़ी को आवश्यक है हम उतना उसको करते हैं, लेकिन कोई गाड़ी से प्रेम नहीं करने लगता, गाड़ी के साथ जाके उसमें प्रेम के गाने नहीं गाते हैं कि वहीं पे गाड़ी में रहें या गाड़ी में ही सोऊंगा, इतनी अच्छी गाड़ी है मैं गाड़ी में, व्यक्ति घर में सोता है। तो ये केवल उदाहरण दे रहे हैं कि इस तरह शरीर को भी गाड़ी मानना चाहिए, एक व्हीकल है जो हमें भगवान तक ले जाएगा, जो हमें आत्म साक्षात्कार तक ले जाएगा। तो उस मार्ग को पूर्ण करने के लिए या उसकी प्राप्ति करने के लिए जितना आवश्यक है उतना हमें देना चाहिए। गाड़ी में फ्यूल डालना पड़ता है, गाड़ी में उसको साफ रखना पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, इसी तरह शरीर को करना है। लेकिन शरीर ही सब कुछ है, जैसे शरीर हमें आनंद देगा, शरीर कष्ट देता है हम जानते हैं, लेकिन यही शरीर हमें आनंद देगा ये मानना गलत है, इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। तो इसलिए यस, ये जरूरी है कि हम शरीर की भी केयर करें। शरीर, प्रभुपाद ने हमेशा ये बतलाया है कि सबसे पहले हेल्थ, सबसे पहले स्वास्थ्य होना चाहिए, तब आप जाकर भक्ति कर सकते हैं। तो हमें शरीर का केयर करना है, शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन केवल जितनी आवश्यकता है उतना, इसको अनासक्ति कहते हैं। अनासक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम शरीर को देखना ही भूल जाएं, तो फिर आप थोड़े समय में बीमार हो जाएंगे, ना भक्ति कर पाएंगे, ना आत्मा को जान पाएंगे। तो इसलिए अनासक्ति का मतलब है कि जितना आवश्यक है उतना देना चाहिए शरीर, जैसे हम एक कार को देते हैं, बस होता है। ठीक है माता जी, और कोई प्रश्न है? कल कृपया समय पर आइए, और कल के बाद फिर हर शुक्रवार और शनिवार को हम लोग ये क्लास करने का प्रयास करेंगे, ताकि जितने असुर हो सके उनको हम लोग मार दें। बड़ा रुचिकर है ये कोर्स, इसमें जब असुरों का चालू होगा, असुरों का वर्णन शुरू होगा, तो उसमें पहले वो लीला का वर्णन करेंगे, क्या लीला हुई संक्षेप में, फिर वो असुर अपने पूर्व जन्म में क्या थे, सारे असुरों का वर्णन पूर्व जन्म का उनका किया गया है, किस कारण से वो ये असुर बने और उन्होंने ऐसा किया, तो फिर उनके पूर्व जन्म का वर्णन होगा और क्या वो प्रतिनिधित्व करते किस अनर्थ को, और फिर उस अनर्थ को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये चारों चीजों का वर्णन हर लीला में होगा, तो कृपया आप लोग बड़े ध्यान से इसको गंभीरता से लीजिए और प्रयास कीजिए कि सारे प्रवचनों में आप लोग आ सके। हरे कृष्ण। शिला देवी।